अनंत लोकाधिपति परम वंदनी जो अधम उद्धारन पतित पावन दीन बंधु जानकी वल्लभ श्री रामचंद्र जी ज्ञान भक्ति के आधार हैं, जिन्होंने श्री कृष्ण रूप से पार्थ सारथी बनकर कुरुक्षेत्र के महासंग्राम में श्रीमद् भगवत गीता का मधुर शंखनाद किया। वही परात्पर पर ब्रह्म उभय स्वरूप को धारण कर धरा धाम पर श्री राम कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं।
जय राम कृष्ण नाम बोलो मन अभिराम, नाम सदा त्रैताप हरे। दिव्यानंद महिमा अपार, नाम महामंत्र है जपो बारंबार। लाभ होगा चैतन्य जीवन होगा धन्य, लाभ होगा चैतन्य जीवन होगा धन्य, परम पद तुम पाओ। कृष्ण हमारे अहेतु की कृपा सागर है, भजो राम कृष्ण अंतर मन से, भजो राम कृष्ण अंतर मन से, देंगे दर्शन प्रभु मेरे।
गया धाम में भगवन नामाविष्ट तपहपूत श्री खुदी राम को स्वप्न में ज्ञात हुआ कि भगवान श्री विष्णु उनके पुत्र के रूप में धरा धाम पर अवतरित होंगे।
और इधर भगवान विष्णु के स्वप्नादेश को साकार करने के लिए जब भक्त खुदी राम की सहधर्मिणी स्नेह तथा सरलता की मूर्ति चंद्रमणि देवी योगियों के शिव मंदिर में पूजा करने गईं, तो देवाधिदेव महादेव के श्री विग्रह से सहसा एक दिव्य ज्योति निकली और चंद्रमणि देवी के उदर में प्रवेश कर गर्भ का संचार करने लगी।
पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में अवस्थित कामार पुकुर गांव, जहां बुधवार 18 फरवरी 1836 ईस्वी के शुभ ब्रह्म मुहूर्त में परम प्रभु स्वयं दिव्य शिशु के रूप में अवतरित हुए।
ये कौन आया रे
कामार पुकुर में,
चहु दिशी उमड़े
दुख निशी।
कृपा सिंधु तुम जग के मी
प्रसूति गृह में नवजात शिशु के ना मिलने पर धाई माँ धनी दीप की लौ तेज कर उसे ढूंढने लगी और अचानक उसने देखा कि वो शिशु धान उसन्ने के चूल्हे की राख में लिपट कर चुपचाप पड़ा है। तभी भाव विभोर हो धनी कहने लगी,
अरे तू योगी के वेश में मगन पड़ा है और मैं जान गई योगियों के शिव मंदिर की वो अलौकिक ज्योति घनीभूत हो आज शिशु के रूप में अवतरित हुई है। हे भस्म धारी शिशु भोलेनाथ, तू इस अछूत अधम धनी का प्रणाम स्वीकार कर।
शुभ मुहूर्त में शिशु का नाम रखा गया गदाधर। माता पिता उसे प्यार से गदाई कहकर पुकारते। बालपन से ही गदाधर सृष्टि तत्व और ईश चिंतन में मगन रहा करता।
सीता नाथ पायन बाबू के यहाँ एक बार महाशिवरात्रि के उपलक्ष में आयोजित नाटक में बाल गदाधर को शिव का अभिनय करना पड़ा।
स्वभाव से स्वच्छ धवल सच्चिदानंद शिव, शीश पर जटा जूट, जटा में शोभित पावनी गंगा और अर्धचंद्र,
गले में काल कूट और सर्प की माला, कटी में बाघंबर, सर्वांग भस्म से विभूषित,
एक हाथ में त्रिशूल तो दूसरे में सिंगा और ललाट पर उद्भाषित त्रिनयन,
शिव रूप में स्वयं को देखकर शिवमय हो गदाधर मंच पर ही भावाविष्ट हो गया।
ओ शिव शंकर हर त्रिपुरारी, जय शिव शंकर हर त्रिपुरारी, शंभु पशुपति पिनाकधारी, जय शिव शंकर हर त्रिपुरारी।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
सिर पे जटा जुट कंठ कालकूट, सिर पे जटा जुट कंठ कालकूट, साधक जनगण मानस बिहारी, त्रिलोक पालक त्रिलोक नाशक,
करुणा बरसाए, भक्तन पर करुणा बरसाए, भक्तन पर वारूं तन मन चरण तिहारी। जय शिव शंकर हर त्रिपुरारी।
ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
अपने शुभ उपनयन के अवसर पर जब गदाधर ने हट किया कि वह प्रथम भिक्षा धाई मां धनी से ही ग्रहण करेगा, तब उसके बड़े भाई रामकुमार ने कहा,
देखो गदाधर, धनी अछूत जात की है, इसलिए उससे भिक्षा लेना या उसे मां कहकर संबोधित करना हम जैसे उच्च कुल वालों को शोभा नहीं देता।
भैया, जात पात की बातें छोड़ें, मैंने धनी मां को वचन दिया था और वचन का पालन नहीं करने पर मैं मिथ्यावादी कहलाऊंगा, और मिथ्यावादी जनेऊ कैसे धारण कर सकता है भैया?
गदाधर जब युवा हुए तो अग्रज रामकुमार उन्हें कलकत्ता ले आए और विद्या लाभ के साथ साथ अर्थोपार्जन के लिए प्रेरित किया। तब गदाधर ने कहा,
ना भैया ना, ये धन जुटाने वाली अर्थोपार्जन विद्या तो अविद्या है। इस विद्या से भोगों की प्राप्ति हो सकती है, परंतु भगवान की प्राप्ति कभी नहीं। मैं तो कहता हूँ, रुपया पैसा माटी जैसा, रुपया पैसा माटी जैसा, रुपया पैसा।
माँ भगवती के स्वप्न आदेश के पश्चात रानी रासमणी ने कलकत्ता के निकट दक्षिणेश्वर में पतित पावनी गंगा के तट पर देवी भवतारिणी के नाम से माँ काली के भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जहाँ भक्ति भाव में लीन गदाधर माँ काली के साक्षात दर्शन के लिए व्याकुल हो उठे।
न जाने कब दर्शन दोगी माँ, हे मनोरमा न जाने कब दर्शन दो अब अब हमारी सुन ले माँ, 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 न जाने कब दर्शन दोगी माँ, माँ
दर्शन दे माँ, दर्शन दे माँ। मैं साधना नहीं जानता, भजन नहीं जानता, केवल तुझे जानता हूँ माँ, केवल तुझे जानता हूँ माँ। दर्शन दे माँ, दर्शन दे माँ। माँ तूने साधक कवि भक्त राम प्रसाद को दर्शन दिया है माँ, तूने भगवती के उपासक कमलाकांत को दर्शन दिया है, तो मुझे क्यों नहीं दर्शन दोगी माँ? बोल मुझे क्यों नहीं दर्शन दोगी? बोल माँ, बोल। माँ दर्शन नहीं दोगी तो मैं अपने जीवन का अंत अभी कर दूंगा।
दीवार से टंगा खड़ग उतार कर गदाधर ने ज्यों ही स्वयं को मिटाने का प्रयास किया, तभी अकस्मात देवी माँ की प्रस्तर मूर्ति प्राणवती हो उठी। गदाधर को माँ काली ने साक्षात दर्शन दिया।
माँ, 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 माँ,
के जीवन काल में कई धर्म गुरुओं और आचार्यों का आगमन हुआ। गदाधर की गुरु माता तंत्र साधिका योगेश्वरी भैरवी ने एक साधु सभा बुलाकर गदाधर को ईश्वर का अवतार देहधारी पुरुषोत्तम घोषित किया। आचार्य तोतापुरी महाराज ने उन्हें सन्यास की दीक्षा दी और गदाधर निर्विकल्प भाव भूमि में आरूढ़ हुए। तत्पश्चात गदाधर राम कृष्ण परमहंस के नाम से विख्यात हुए।
श्री श्री ठाकुर ने सभी संप्रदायगत धर्मों के बीच प्रेम और भक्ति की आस्था का मार्ग प्रशस्त करते हुए ये निर्विवाद रूप से सिद्ध कर दिया कि जितने मत हैं उतने ही पथ हैं, किंतु सबों का चरम लक्ष्य एक ही है और वो है ईश्वर प्राप्ति।
मन मेरे चल दक्षिणेश्वर धाम, मन मेरे चल दक्षिणेश्वर धाम। वो तो राम कृष्ण की लीला स्थली रे, वो तो राम कृष्ण की लीला स्थली रे। महापुण्य स्थान दक्षिणेश्वर धाम, मन मेरे चल दक्षिणेश्वर धाम। जहाँ गगन पवन में गूंज रहा है, ओ जहाँ गगन पवन में गूंज रहा है, राम कृष्ण गुणगान दक्षिणेश्वर धाम, दक्षिणेश्वर धाम। पंचवटी में गुरुवर ने दिया ठाकुर को परमहंस नाम, गंगा तट पर भवतारिणी माँ का द्वार, गंगा तट पर भवतारिणी माँ का द्वार। ठाकुर ने किया जहाँ प्रेम भक्ति दान, दक्षिणेश्वर धाम, मन मेरे चल दक्षिणेश्वर धाम। ओ
आत्मीय स्वजनों की मोहांधता ने श्री श्री ठाकुर को घर गृहस्थी में बांध कर रखना चाहा। फल स्वरूप ठाकुर के विवाह हेतु कन्या ढूंढी जाने लगी, परंतु योग कन्या नहीं मिलने पर सर्वज्ञ श्री श्री ठाकुर ने अपने विवाह हेतु स्वयं ही कन्या का चयन किया और तब ठाकुर की इच्छानुसार जय राम वाटी गांव के श्री रामचंद्र मुखोपाध्याय जी की इकलौती कन्या लगभग 6 साल की बालिका शारदा देवी से ठाकुर का विवाह कर दिया गया।
युवावस्था प्राप्त होने पर शारदा देवी एक दिन लेटी हुई थी, तभी ठाकुर उन्हें निहारते हुए सोचने लगे।
रे मन, तू जिसे देख रहा है वो तेरी पत्नी शारदा है। उस पत्नी के सानिध्य में रहते हुए यदि तेरी सारी इंद्रियां और रिपुदल ये सभी कामजयी बनकर ईशमुखी बने रहे तो सचमुच तू ब्रह्मज्ञ है। इसलिए विचार कर, तू ठीक ठीक बोल, तुझे क्या चाहिए, नारी शरीर या ईश्वर?
हाँ ठाकुर, आप?
हाँ शारदा, मैं तुमसे एक बात पूछूं?
हाँ पूछिए ना।
क्या तुम मुझे सांसारिक पद पर खींचने के लिए आई हो?
नहीं, मैं तो आपकी सहचरी हूँ।
साधु,
आपके ही साधना पथ पर मैं आपका साथ देने आई हूँ।
मैं धन्य हुआ देवी, मैं धन्य हुआ, मेरा जीवन सफल हो गया। जय मां, जय मां, जय मां भवतानि।
श्री श्री ठाकुर ने फल हारिणी काली पूजा की रात्रि में अपनी धर्म पत्नी शारदा देवी की विधिवत षोडशोपचार पूजा कर विश्व को अचंभित कर दिया। साथ ही श्री श्री माँ शारदा देवी को जगत माता के रूप में प्रतिष्ठित कर विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया।
ठाकुर रामकृष्ण की अलौकिक लीलाओं की गाथा चारों ओर फैलने लगी। उनके निकट गृहस्थ ब्रह्मचारी और अनेक धर्मात्मा भक्त आए। इसी बीच नरेंद्र नाथ दत्त भी आए, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री श्री ठाकुर नरेंद्र नाथ को नरेन कहकर पुकारते थे। एक दिन किशोर नरेन ने ठाकुर से जिज्ञासा की,
ठाकुर आप जो हर समय माँ माँ की रट लगाए रहते हैं, तो क्या आपने कभी माँ काली को देखा है?
हाँ देखा है, जैसे तुम्हें देख रहा हूं ठीक उसी तरह।
तो क्या मैं भी माँ काली को देख पाऊंगा?
हाँ अवश्य देख पाओगे, तुम्हारे नेत्र जैसे योगी के नेत्र, इन नेत्रों से माँ को अवश्य देख पाओगे। नरेन अब तू एक गीत सुना दे।
मन रे चलो निज धाम, मन रे चलो निज धाम, मन रे चलो निज धाम। भटक रहा परदेसी वेश में, बन संसारी निरत का, मन रे चलो निज धाम। चक और भूत गण कोई ना अपना पराए सब जन इतर प्रेम में हुआ चेतन भूल गया रे निज मन रे चलो पथ में मन कर आरोहण प्रेम ज्योति जना कर विचरण तम बल राखो तदा पुण्य धन अति गोपित कर दान पथिक लुटे रे लोभ मोह सब पथिक लुटे रे तेरा सब कुछ करे हरण परम जतन से राखो पहरुआ शमदम चलो निज धाम मन रे चलो निज धाम मन रे चलो निज धाम।
ईश्वर संबंधी बातों को अपने ही तर्क बुद्धि की कसौटी पर कसने वाला नरेन जब पितृवियोग से व्यथित अर्थाभाव से विपन्न और सांसारिक समस्याओं से क्लांत हो पड़ा तब एक दिन हतोत्साह नरेन ठाकुर से कहने लगा,
ठाकुर मां भाइयों का कष्ट अब मुझसे नहीं देखा जाता, कृपया आप मां काली से कहकर उनकी दीनता दूर कर दें।
नरेन तू स्वयं मंदिर में जाकर माँ काली से प्रार्थना क्यों नहीं करता? सुन, आज मंगलवार है, आज तू आनंदमयी माँ से जो भी मांगना है मांग ले, माँ तुझे अवश्य देगी।
जी जी ठीक है।
रात्रि के द्वितीय प्रहर माँ भवतारिणी के मंदिर में पांव रखते ही नरेन के हृदय में प्रेम भक्ति के भाव उमड़ने लगे।
अरे ये क्या दिव्य ज्योत से मंदिर ज्योतिर्मय हो रहा है, आलोकमयी मां के दर्शन से मैं अपनी शुद्ध बुद्ध खोता जा रहा हूं। कैसा चमत्कार है मां, मां मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, विवेक दो, वैराग्य दो मां, वैराग्य दो मां।
क्यों रे नरेन, मां भगवती से सब कुछ मांग लिया ना?
देवी मां के अलौकिक दर्शन से बेसुध मैं अपनी पारिवारिक व्यथा को कहना ही भूल गया, अब क्या होगा ठाकुर?
नरेन राजा के प्रसन्न होने पर उससे तुझ कद्दू कोहरा मांगना तो मूर्खता है।
तो ठाकुर
जा, मां तेरा कल्याण करेंगे। जय मां भवतारिणी, जय मां।
ठाकुर
जय मां,
ठाकुर ठाकुर।
तेजस्त्वरन्ति तरसा त्वयि तृप्त तृष्णा रागे कृते ऋतुपथे त्वयि राम कृष्णे।
एक बार स्टार थिएटर में नाट्याचार्य गिरीश चंद्र घोष द्वारा रचित चैतन्य लीला नाटक देखने के बाद श्री श्री ठाकुर ने कहा,
गिरीश नाटक करते रहना चाहिए, नाटक से भी लोग सीख लेते हैं।
ठाकुर, आज आपकी चरण धूल से ये रंगशाला पवित्र हो गई।
कलिकाल में नाम सुमिरन और करताली देकर हरि कीर्तन करने से जीव मात्र का उद्धार होता है। जिस प्रकार ताली बजाने से पेड़ पर बैठे सारे पंछी उड़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार ताली बजाकर कीर्तन करने से मानव के देह मन रूपी पेड़ पर बैठे पाप ताप भी पंछियों की तरह उड़ जाते हैं।
ओह, ये तो उपदेश देने आए हैं, यही अच्छा मौका है, इन्हें थोड़ा परख लूं। अब अच्छा ठाकुर, गुरु किसे कहेंगे?
गुरु का मतलब है अगुआ, जो भगवान से भक्तों का मिलन करवा देता है। गिरीश, तेरा तो गुरु हो गया है रे।
हाँ? अच्छा, मंत्र क्या है ठाकुर?
प्रभु का नाम, परंतु तेरे मन में अभी भी खोट है।
अरे, ये तो मन को भी भाप लेते हैं। ठाकुर, ये खोट कैसे जाएगी ठाकुर?
केवल आस्था से।
आस्था?
हाँ, आस्था के साथ सुबह शाम प्रभु का नाम लो।
ओ, सवेरे तो नींद टूटती ही नहीं और शाम को थिएटर।
तब आहार से पहले भगवान का नाम ले लेना।
मेरे स्नान और आहार का कोई ठिकाना नहीं रहता ठाकुर।
तब सोने के समय?
ठाकुर, कब कहां किसके बिछावन पर सोता हूं। ओफ, मेरे जैसे दुष्चरित्र मध्य पापी से ये नाम ध्यान नहीं हो पाएगा ठाकुर, नहीं हो पाएगा।
यदि ऐसा नहीं कर सकते तो मुझे बकलमा दे दे।
मतलब?
तू अपना सारा भार मुझे सौंप दे।
हाँ, यही ठीक होगा, यही ठीक होगा ठाकुर। हे पतित पावन, मुझसे सारा भार ले लो। मेरा पाप पुण्य ले लो। मेरा तन मन ले लो। मेरी ज्ञान बुद्धि सब ले लो। मुझे केवल अपने चरणों में स्थान दे दो।
जय मां।
चरणों में
जय मां। जय मां।
अपने चरणों में स्थान।
जय मां। जय।
तुझसे हमने दिल को लगाया, तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है, एक तुझको अपना कुछ है सो तू ही है।
ठाकुर कभी प्रकांड पंडित एवं परोपकारी श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ब्रह्म समाज के प्रधानाचार्य श्री केशव चंद्र सेन जैसे अनेक महान लोगों के घर स्वयं जाकर उन्हें ज्ञान भक्ति के रस में सराबोर करते रहे, तो कभी दक्षिणेश्वर मंदिर की अपनी कोठरी में बैठकर भक्तों को वचनामृत पिलाते रहे।
मात्र पोथी पढ़कर उपदेश देने वाले पंडितों को ऊंचा आसन तो मिल सकता है, परंतु ऐसे पंडितों की कामनी कांचन से आसक्ति नहीं जा पाती। इन पंडितों की दशा उस गिद्ध की तरह होती है जो खूब ऊंचा उड़ता तो है, परंतु वो हमेशा धरती पर पड़े सड़े गले मांस की ओर ताकता रहता है। इसलिए केवल पांडित्य से भगवान को नहीं जाना जा सकता।
सुंदर,
धन्य हो,
साध साध
साध।
अच्छा महाशय, हमारा मन कभी ऊर्ध्वमुखी तो कभी अधोमुखी होता ही रहता है, ऐसा क्यों?
देखो, संसारी लोग कामनी कंचन में लिप्त रहते हैं, इसलिए उनका मन सामान्य मक्खी की तरह कभी मिठाई पर जा बैठता तो कभी विष्ठा पर जा बैठता। किंतु योगी का मन वैसा नहीं रहता, उसकी अवस्था तो मधुमक्खी की तरह होती है जो केवल फूल पर ही बैठकर मधुपान का आनंद लेती रहती है।
साध साध साध।
राम कृष्ण नाम की उठी रे तरंग, पार लगा ले जीवन की नाव। भक्ति भाव उछल पड़ा रे, हा बलि बलि जाओ। भक्ति भाव उछल पड़ा रे, हा बलि बलि जाओ।
Hey!
सर्व संताप हरी श्री श्री ठाकुर ने असंख्य प्राणियों के पाप रूपी हलाहल को अपने कंठ में धारण किया, जो कालांतर में काल रोग कैंसर बनकर ठाकुर के गले में प्रकट हुआ।
एक दिन कैंसर की भीषण यंत्रणा देखकर भक्त प्रवर शशधर ने श्री श्री ठाकुर से आग्रह किया,
हे साधक चूड़ामणि, शास्त्रों के अनुसार आप जैसा अवतारी पुरुष यदि मन को एकाग्र कर इच्छा प्रकट करे कि शरीर रोग मुक्त हो जाए तो अवश्य हो जाएगा।
अरे शशधर, तुम तो ज्ञानी पंडित हो, फिर ऐसी बातें क्यों कहते हो? जो मन सच्चिदानंद घन परमेश्वर को समर्पित कर चुका हूं, उसे क्या इस हार मांस के पिंजरे में फिर से लौटा लाऊं? ना ना, ये बात ठीक नहीं, ठीक नहीं।
विशेष चिकित्सा और सेवा शुश्रूषा के निमित्त परमहंस ठाकुर को काशीपुर उद्यान वाटिका लाया गया, जहां कई दिनों के पश्चात कैंसर रोग ग्रस्त ठाकुर की शारीरिक स्थिति ऐसी हुई कि वो पानी की तरह गीला भात भी निकल नहीं पा रहे थे। तभी एक दिन ठाकुर के समीप बैठा नरेन ठाकुर की ये भीषण पीड़ा देखकर मन ही मन कहने लगा,
यदि ठाकुर इस असाध रोग यंत्रणा में भी कह पाए कि वो ईश्वर के अवतार हैं, तो मुझे विश्वास हो।
नरेन जी सुन, ये तन रहने पर भूख प्यास रोग भोग आदि लगा ही रहेगा, परंतु तेरी शंका को दूर करने के लिए आज मैं अपना भेद खोल ही देता हूं। नरेन, भगवान जो अवतरित हुए त्रेता में राम द्वापर में कृष्ण, वही अब इस शरीर में है, राम कृष्ण।
मुझे क्षमा करे हे अवतार वरिष्ठ श्री राम कृष्ण देव, खंडन भवबंधन जगवंदन तुम्हें प्रणाम।
सन 1886 ईस्वी की पहली जनवरी काशीपुर उद्यान वाटिका में श्री श्री ठाकुर को हरित वस्त्र में आते देख भक्तगण हर्षोत्फुल्ल होकर बारंबार नमन करने लगे।
राम कृष्ण तुम्हें करो प्रणाम, हे राम कृष्ण तुम्हें करो प्रणाम, तेरी अलौकिक लीला से मैं अनजान, तेरी अलौकिक लीला से मैं अनजान, राम कृष्ण तुम्हें करो प्रणाम, हे राम कृष्ण तुम्हें करो प्रणाम। चिन्मय सुंदर और मनोहर, चिन्मय सुंदर और मनोहर, आप सोहिया में करुणा कर, आप सोहिया में करुणा कर, सजल नयन से निहारो भगवान, सजल नयन से निहारो भगवान,
ठाकुर की ये कैसी लीला मैं देख रहा हूं, जो कल तक कैंसर रोग के भीषण यंत्रणा से पीड़ित थे, आज वही ठाकुर शारीरिक रोग भोग से परे उच्चतम भाव में निमग्न प्रफुल्ल और अलौकिक छटा से विभूषित होकर पैदल ही चले आ रहे हैं। ओह, अब मैं समझा, ठाकुर भक्त वांछा कल्पतरु के रूप में आज प्रकट हुए हैं। आओ भक्तों, आओ, वांछा कल्पतरु ठाकुर के श्री चरणों का स्पर्श करके धन्य हो जाओ, धन्य हो जाओ।
ए गिरीश, तुम मेरे अवतार होने की बात सबसे कहते रहते हो, मुझ में ऐसा तूने क्या देखा है?
क्षमा प्रभु, क्षमा, जिसकी महिमा का बखान वेद व्यास वाल्मीकि और बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कर सके, उसके बारे में मैं क्या कहूं?
जय राम कृष्ण, जय राम कृष्ण, जय राम कृष्ण।
मैं तुम लोगों को और क्या कहूं, परमात्मा से प्रार्थना है कि तुम सभी को चैतन्य लाभ हो, चैतन्य लाभ हो, चैतन्य लाभ हो।
जय राम कृष्ण शरणम्, राम कृष्ण शरणम्, राम कृष्ण शरणम्, शरण्ये।
राम कृष्ण शरणम्, राम कृष्ण शरणम्,